ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबका श्री बरसाना धाम में स्वागत है। हरे कृष्णा, जय हो। अनंत जन्मों के पुण्य के बाद में धाम में आने का भाग्य होता है। ये धाम साधारण धाम नहीं है, यहाँ पर पहुँचना भी इतना आसान नहीं है, और शरीर से यहाँ पर पहुँच भी जाएंगे तो आत्मा से पहुँचना भी आसान नहीं है। कई सारी बाधाएं होती है ना। सबसे बड़ी बाधा जो है ना धाम में प्रवेश करने के लिए, वो हमारी चेतना होती है, मतलब खुद हम खुद सबसे बड़ी बाधा होती है। क्योंकि जब हम खुद इसके चेतना के योग्य नहीं रहते हैं, वो हमेशा बोलते हैं ना टीवी पर और रेडियो पर, स्टे ट्यून्ड स्टे ट्यून्ड स्टे ट्यून्ड, बहुत इम्पोर्टेंट है वो। उनकी जो लहरी है ना, लहरें वेव्स, वो आप मैच करेंगे तो उनका आपको सुनाई पड़ेगा, कोई भी लगाएंगे तो उसे सुनाई पड़ेगा। तो अगर वो रेडियो के बारे में सही है, अगर वो टीवी के बारे में सही है, तो चेतना के बारे में कितना सही होगा। वो धाम की चेतना एक लेवल पे होती है और हमारी चेतना अलग लेवल पे होती है। जब हमारी चेतना और धाम की चेतना मिल जाती है ना, तो कुछ कुछ आवाज़ सुनाई पड़ती है वहाँ की। तो अगर आपको निरंतर वहाँ की आवाज़ सुनना है तो आपको उस चेतना को मैच करना पड़ेगा। यहाँ की जो लहरें हैं वो आपकी लहरों के साथ में मैच करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो भी हमारी शहर की लहरें हैं वो छोड़ के आना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो वही है ना, जो आपने पकड़ के रखा है उसको छोड़ना पड़ेगा। बच्चा भी कैसा होता है ना, अभी कोई गंदा खिलौना पकड़ के रखा है उसने और दस्त हो रहे, उसको कष्ट हो रहे, बुखार आ रहा है, उसको छुड़वाना है तो कोई नया खिलौना पकड़ना पड़ेगा ना, जो अच्छा वाला है। तो पुराना खिलौना छोड़ देगा वो, और पुराना जो छोड़ेगा तो नया कैसे पकड़ेगा। तो नया भी होना चाहिए और पुराना छोड़ने की इच्छा भी होनी चाहिए। उसके लिए ज्ञान होना ज़रूरी है कि ये खराब है ये अच्छा है। तो सबसे बड़ी बात अपनी चेतना है। तो अपनी चेतना को कैसे तैयार करें, अपनी चेतना को तैयार कैसे करें। एक तो जो हमारे वरिष्ठ जन हैं, गुरुजन हैं या शिक्षा गुरु हैं, उनके आज्ञा में चले हमेशा, अपने मन से कुछ न करें। मुझे ये करना है तो मैं कर रहा हूँ। उससे हमारी चेतना धाम की जितना से मिलती जुलती नहीं होती है। हमें हमारे जो शिक्षा गुरु हैं, गांव गाइड हैं, गुरुजी हैं, उनके आज्ञा में ही करना है सब कुछ, क्योंकि उनकी आज्ञा पालन करने में इतनी कृपा है भगवान की, इतनी कृपा है कि एकदम परफेक्ट कनेक्शन हो जाता है भगवान से उससे। सबसे बड़ी बात हमारे लिए है कि मन मर्जी जो होता है ना, हम लोग करते रहते हैं अपनी मन मर्जी से। हाँ, सब भक्ति का काम कर रहे हैं लेकिन मर्जी से कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे मंदिर में आके फिर एकदम कुछ महीनों के लिए भोजन बनाने में इतना लग जाते हैं, फिर सडनली निकल जाते हैं। तो वो आपको लगे बाप रे कितना शरणागति है इनकी, कितना मेहनत करते हैं, बाप रे दिन रात लग रहे हैं। लेकिन जब उन मन उबक गया ना, तुरंत छोड़ के चले जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो खुद के लिए कर रहे हैं, उनको तभी खुद को भोजन बनाना का सेवा अच्छा लगता था इसलिए वो कर रहे हैं। जब वो अच्छा लगना बंद हो गया तुरंत छोड़ दिया उसको, तुरंत दूसरा कौन सा अच्छा लग रहा है वो ढूंढ रहे हैं। और उसमें लगे हुए दिखेंगे, उसमें भी पूरा एकदम दिन रात लगे दिखेंगे आपको, लेकिन अंदर में क्या हो रहा है ना वो भगवान जानते हैं। इसलिए ये मन मर्जी हम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग दुनिया में जी रहे हैं। भौतिक दुनिया में क्यों जी रहे हैं? क्योंकि हमको मन मर्जी करनी है। मन मर्जी करने का मतलब क्या होता है कि मैं मालिक हूं। मालिक मालिक होने के नाते मैं नियंत्रक हूं, जो भी मेरे अधिकार में है उसका मैं स्वामी हूं, और मेरे आनंद में जो करना है वही मैं करूंगा। इसके लिए हम लोग यहां पर हैं। ये बेसिक भौतिक दुनिया में रहने का कारण है कि हम लोग सब लोग भगवान को छोड़कर इंडिपेंडेंट, हाँ स्वा क्या है कहते, स्वनियंत्रित जीवन जीना चाहते हैं, इसलिए हम लोग यहां पर हैं। तो यहां से निकलना है तो स्वनियंत्रित छोड़कर भगवान नियंत्रित होना चाहिए, कंट्रोल बाय गॉड, कंट्रोल बाय कृष्णा होना चाहिए। पूरी जिंदगियां हम जी रहे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद अनंत जिंदगियां जी रहे हम लोग, खुद को स्वामी बनाने के प्रयास में जी रहे हैं। हर बार हार रहे हैं, हर बार पटक पटके जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हर बार कोशिश कर रहे हैं कि चलो लास्ट टाइम नहीं हुआ इस टाइम सफल हो जाएंगे, लेकिन वो सफल होने का मामला नहीं है उसमें, तो हमको हारना ही है, हमेशा पराजित ही होना है। और वो जब समझ में आता है तो फिर हम लोग भक्त बनने का प्रयास करते हैं। और भक्ति के मार्ग में ना बिना मार्गदर्शक के भक्ति होती नहीं है। एकांत देखिए हरेर भक्तिर उत्पात यही भी कल्पते, अकेला मैं भक्ति करूंगा, अकेला भक्ति करूंगी तो उत्पात, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी, सबके लिए उत्पात। उत्पात का मतलब क्या है? पीड़ा, कष्ट, संकट उत्पन्न होता है, केवल दूसरों के लिए नहीं खुद के लिए भी होता है। इसलिए हमारा भाग्य है कि हमारे पास ऐसे कई गाइडेंस करने वाले लोग हैं, छोटे लेवल पे हैं, बड़े लेवल पे हैं, बड़े से बड़े लेवल पर भी हैं, हर लेवल पे अपने को गाइडेंस यहाँ पर है अवेलेबल। तो हमेशा हमारा हित ना किसी के गाइडेंस में रहने का है, उसमें हमारा हित है, उसमें हम सुरक्षित रहते हैं। जब तक आपने माँ की उंगली पकड़ी है, मेले में घूम रहे हैं जतरा में, माँ की उंगली पकड़ के रखी है, तब मेले में कितना भी चकाचौंध चलता रहेगा फिर भी आप सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि आपने वो उंगली पकड़ के रखी है। माँ ने बताया किधर भी देख उंगली छोड़ना नहीं है बस। माँ बोलती है ना, सब जगह चमचमाते हुए लाइट दिख रहे हैं, कुछ घूम रहा है गोल गोल गोल, कुछ खाने की चीज़ें हैं, कुछ ये चीज़ें हैं, कुछ लोग ऐसे जोकर बन के घूम रहे हैं, सब देखो आप, लेकिन मेरी उंगली नहीं छोड़ना है आपको। तो वो आज्ञा पालन है भगवान का, गुरु जी का, शिक्षा गुरुओं का। तो वैसे ही धाम में तो और ज़्यादा है वो, हमको लगता है धाम तो भगवान का धाम है, इसमें सब भक्ति होती है, भगवान के तीर्थ स्थान है, बहुत सारी चीज़ें धाम में हैं जो स्पिरिचुअल है। लेकिन जिस धाम में कृष्ण थे वहीं पर कंस था, वो बॉम्बे में नहीं था, दिल्ली में नहीं था, वो उधर ही था, पुतना भी उधर ही थी। ये आचार्य बताते हैं, इधर साइड साइड में खड़े हैं, जितने ज़्यादा प्रभाव में कृष्ण आपको यहाँ पर दिखते हैं ना, कृष्ण के अनुभूतियाँ प्राप्त होती है, कृष्ण की चेतना प्राप्त होती है, उतने ही प्रभावशाली माया भी यहाँ पर होती है। यहाँ पर जितने खून खराबे होते हैं ना वो बॉम्बे में भी नहीं होते हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा यहाँ पर क्या क्या होता है, क्योंकि कैसा है, जरा से कृष्ण की चेतना छूट गई तुरंत यहाँ पर माया की चेतना रेडी है आपके ऊपर हावी होने के लिए। कृष्ण भी लक्ष गुना अधिक पावर में आपके लिए उपलब्ध है यहाँ पर, लेकिन उनको छोड़ देंगे आप, अगर आज्ञा पालन छोड़ देंगे और उनकी चेतना छूट जाएगी तो उतने ही हजारों गुना लाखों गुना माया आपके ऊपर प्रभावी हो जाएगी जितनी बॉम्बे में नहीं होगी। ऐसा समझना आपको बहुत जरूरी है। यहां रहकर अगर कोई गलत सोचेंगे ना उसका लक्ष्य गुना परिणाम आपको होगा, यहां रहकर अगर आज्ञा पालन में सेवा करेंगे तो लक्ष्य गुना लाभ भी आपको होगा। तो ये सब चेतनाओं को समझना बहुत जरूरी है, टू अंडरस्टैंड द नीड टू बी हियर। शरीर से नहीं है, आत्मा से, आत्मा के सर पर अगर रहना है यहाँ पर और आत्मा के सर पर लाभ लेना है तो वो चेतना तैयार करनी होगी। बैग तो हम लोग भर लेते हैं, अभी ठंडी है तो वार्म क्लोथ भर लिया आपने, टूथब्रश लिया, ये लिया, कपड़े लिए, सब कुछ लेते हैं हम लोग, लेकिन चेतना की तैयारी करेंगे ना तो ही धाम में प्रवेश मिलेगा। तो नम्रता, आज्ञाशीलता, आज्ञा पालन, सेवा भाव, वो भी नहीं कि मुझे ये सेवा चाहिए वही करूँगा तो मैं नहीं करूँगा, मुझे यहाँ पर ही करना है, जो सेवा मिलेगी वो। गोपियाँ कैसे रहती हैं? वो है कोई गोपी बहुत बढ़िया भोजन बनाने में एक्सपर्ट है। हम पढ़ते हैं ना चंपकलता देवी यशोदा राधा रानी के बाद में स्पेशल कुक है। लेकिन आप अलग अलग ग्रंथ पढ़ेंगे तो आप देख रहे हैं चंपकलता पंखा भी कर रही है, चंपकलता और बर्तन भी मांझ रही है, फूलों की माला भी बना रही है। जैसे आपकी एक्सपर्टीज होगी फूलों की अपना भोजन बनाने की, लेकिन आज आपको फूल बनाने का काम दिया गया है तो आपको वो करना है। अभी आप समझो आपका नाम उधर कुकिंग के लिस्ट में होगा और आप कुकिंग के टीम में आए होंगे, सडनली यहाँ पर कुछ इमरजेंसी आता है तो आपको बोला जाता है कि आप उधर रिसेप्शन में बैठो, तो आप झगड़ा नहीं करेंगे, बोले ठीक है। शादी में कैसे घर में होता है, आपने अचानक इमरजेंसी आ जाती है तो हमको कुछ भी एवरीथिंग करना पड़ता है, वो मेरा काम नहीं, ऐसा होता है क्या? सब हमारा काम है, जो मिलेगा वही हमारा काम है। तो ये सब चीज़ें हैं जो या तो हमको भगवान से मिला देती है साम धाम में, या तो वही सेवा आपको भगवान से जुदा कर देती है। अब सेवा में ही हो, बोले किधर बिगड़ा, क्या गड़बड़ क्या हो गया, मैं सेवा तो कर रहा था। लेकिन इंडिपेंडेंस आ गया, स्वामित्व की भावना आ गई, हाँ मैं बॉस हूँ, नियंत्रक हूँ और मैं मेरी मर्जी से करना चाहता हूँ। अब मेरा मन गोवर्धन परिक्रमा करने का है, मैं जा रहा हूँ, अभी कल आऊँगा। ऐसे होता है ना, सब स्पिरिचुअली है, कुछ उसमें कुछ मटेरियल कुछ नहीं है। यहाँ दर्शन करना है, वहाँ परिक्रमा करनी है, वो बाबा ने वो गोस्वामी ने प्रसाद के लिए बुलाया है, ये केला दीदी ने उधर बुलाया है, सब स्पिरिचुअली है, उसमें कुछ मटेरियल नहीं है कुछ। लेकिन सेवा छोड़ के जाना ना, फिर वो आप वहाँ पर ब्रजवासियों के हाथ का प्रसाद पा रहे हैं लेकिन फिर भी आपको उसका जितना लाभ होना चाहिए उतना लाभ नहीं होगा। इसलिए धाम में कैसा ना, वो गोपियों की तरह रहना चाहिए। कैसी गोपियाँ हैं देखो, सबके साथ भगवान नृत्य कर रहे हैं लेकिन हर एक गोपी को लग रहा है कि मेरे साथ ही कर रहे हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि वो इतने मग्न हैं उसमें, बाजू में क्या चल रहा है उनको पता नहीं है। जैसे वो मधुमक्खी होती है ना भंवरा, वो फूल का रंग पीला है कि गुलाबी है कि नीला है वो देखता नहीं, उसका काम केवल वो हनी मधु जो है ना उसको लेना है। वो देखता नहीं कि आज मैं खाली पीले फूलों का ही हनी लूंगा। हनी चाहिए उसको बस, फूल का रंग गोला गोल हो, चौकोनी हो या कोई और किसी तरीके का हो, वैसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर वही है, जो हमारी सेवा है जो दी गई है बदल सकती है वो, लेकिन जो दी गई है उसमें पूरे दिल जान से मग्नता के साथ, रुचि हो या ना हो लेकिन दिलो जान से उसमें लगना है अपने को। अपना मन जो है ना वो हमको सब जगह भटकाता है, अरे ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ये बरसाना कैंप में वो आज का हमारा डिपार्टमेंट इंचार्ज बराबर नहीं है, वो अपने आप को क्या समझता है, ऐसा सब मन में विचार आते। आप जब तक अपने लाइन में एकाग्रता से सेवा कर रहे हो, कोई बाधा करने की आपको जरूरत नहीं। तो ये कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको धाम की चेतना से मिला देगी, और जब तक धाम की चेतना में नहीं मिलेंगे आप, तब तक धाम का लाभ पूरा नहीं मिलेगा आपको। इसलिए हम बार बार मुंबई में बताते हैं, अपना हेल्थ का भी ख्याल रखो, उटपटांग खाओ मत, 15 दिन से प्रार्थना शुरू करो कि हमको जाना है, हेल्थ का भी ख्याल रखो, अच्छी तरह टाइम पे सो जाओ, टाइम पे उठो। यहाँ पर भी बोलते हैं कि सेवा हो गई तो या तो कीर्तन में आके बैठ जाओ या तो सो जाओ, अगले दिन सेवा में चुस्त रह के आओ। नहीं नहीं अभी तो सेवा हो गई, टाइम भी है, यहाँ जाके आऊँ क्या, वहाँ जाके आऊँ क्या, ऐसे कई लोग पुराने यात्रा में करते थे। तुम लोग समझाते रहे उनको कि जो सेवा करने आए हो उसमें लिए पूरे चुस्त रहो, मन से, तन से, हेल्थ से, भोजन भी उतना ही करो। ऐसा नहीं कि भाई मेदू वड़ा बन रहा है, 8-8 मेदू वड़े खा लो, है ना, इतना बढ़िया मेदू वड़ा तो किधर भी नहीं मिलता है, इतना बरसाना कैंप में मिलता है, हकीकत की बात है। लेकिन आपको आपके हिसाब से लेना है, क्योंकि आपका एम जो है यहाँ के आने का वो मेदू वड़ा खाने का नहीं है, यहाँ पे आके सेवा करने का आपका एम है। उसमें बीच में जो भोजन की आवश्यकता होती है वो जो भी है आनंद लेना है, अच्छी अच्छी चीज़ें बना रहे प्रेम से भक्त लोग, लेकिन आपको देखना है कि हम सेवा के लिए आए हैं, वो सेवा हमको करना है। और हमारा जितना सेवा माध्यम है भगवान से जुड़ने का, वो और कोई माध्यम नहीं है। बाकी प्रसाद भी भगवान से जोड़ देता है, सब कुछ जोड़ता है, लेकिन सेवा में जितनी शक्ति है आपको भगवान के साथ जोड़ने की, वो और किसी में नहीं है। सेवा ऐसे एक इम्यूनिटी है, हाँ, रोग प्रतिकारक शक्ति होती है ना अपने शरीर में, वैसे माया से इम्यूनिटी देने वाला सेवा एक ही माध्यम है, वो किसी भी समय आपको माया से दूर रखेगा। अगर आप सेवा में जुड़े हो तो माया आपको छू नहीं सकती, सेवा छूट गए तुरंत पकड़ेगी आपको, लेकिन सेवा में रहेंगे तो माया आपको छोड़ नहीं सकती, माया पकड़ नहीं सकती। यही इस धाम का सार है। यहां में सब लोग कैसे ना एब्सॉर्ब्ड रहते हैं, मग्न रहते हैं अपनी सेवा में। सब गोपी बोलो आप, गाय कहो, मोर कहो, या ग्वाल बाल, यशोदा माई, सब में ढूंढो आप, एक मग्नता मिलेगी आपको। उनके उनके रस में, उनकी सेवा जो है उसे मग्न रहते हो, उनको और कुछ नहीं चाहिए। तो वही लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जो चीज में आपका दिल लगा है वही आपकी चेतना बन जाती है। तो आपकी सेवा में दिल लग गया, फिर आपका चेतना सर्वश्रेष्ठ हो गया। सेवा करने वाले के भगवान भी क्या कहते हैं उसको, वश में आ जाते हैं उनके। अभी समझो आपके किसी ने सेवा किया तो आपका उनमें मन बनता है ना, अरे इन्होंने मुझे हेल्प किया उस टाइम भी जब मैं ट्रेन में फंसी थी, तब इन्होंने मुझे बेड बना दिया रात को, मैं तो सो नहीं पाती थी, मैं तो परेशान थी, बीमार थी, तो इन्होंने मुझे हेल्प किया। आपका एक लगाव बनता है ना, आप भी वेट करेंगे कभी उनको मैं सेवा कर सकूं। तो भगवान भी ऐसे ही हैं, जब उनकी आप सेवा करेंगे तो भगवान भी बहुत ओब्लाइज हो जाते हैं सेवा के माध्यम से, सेवा करने वाले के बन जाते हैं, उनके ही बन जाते हैं। तो इसलिए यहां पर आने का जो है ना, वो एक होता है स्पिरिचुअल सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये समझना बहुत जरूरी है। आजकल ऐसे जवानों की फौज बन गई है हमारे संस्था में, वो वृंदावन में रहते हैं, यंग है एकदम, और कहाँ पर, यहाँ पर आज प्रसाद है फ्री में, यहाँ पर नंदगांव में यात्रा जा रही है, यहाँ पर ग्वांडेरबंद यात्रा जा रही है, यहाँ पर आज कथा चल रही है, सब जगह मिलेंगे आपको। लेकिन आप उनको बोलो कि ये हॉस्पिस में कोई भक्त जो है वो मर रहा है, उनको आपकी सेवा की जरूरत है, बोलते नहीं प्रभु जी आज नंदगांव की यात्रा है ना, वो जा रहे हैं उसमें, प्रभु जी ये थोड़ा सा काम है, वो जो हॉस्पिस में एडमिट है वो थोड़ा सेवा चाहते हैं आपकी, तो टाइम नहीं है उनके पास। तो क्या है, वो धाम को एंजॉय करने के लिए आ रहे हैं, कर रहे हैं कुछ माया का काम नहीं कर रहे, व्यभिचार नहीं कर रहे, नमाज खा रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी एक धाम को एंजॉय करने का, उनका धाम के जो आनंद है उसको एंजॉय करने का एक भाव है उनका। कथा है, यात्रा है, प्रसाद है, यहाँ पर आज भंडारा है, यहाँ पर आज फ्री फीस्ट है, आज कार्तिक में है हर रोज फीस्ट मिल रही है, फ्री यात्रा है, कोई स्पॉन्सर कर रहा है, भक्त लोग जा रहे हैं, तो सब जगह पर ऐसे घूमना है उनको आनंद लेने के लिए। लेकिन वो लोग कभी भी स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मूड जो है ना वो एंजॉय करने का है, एंजॉयमेंट देने का नहीं है भगवान को। ये एक बहुत कठिन चीज है, आपको लगेगा हम धाम में रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कथा तो सुन रहे हैं भगवान की, प्रसाद तो खा रहे हैं भंडारे में, फेस्टिवल में जा रहे हैं, लेकिन सबसे ऊपर जो है ना वो दूसरों की खुशी है, भक्तों की खुशी है, भक्तों की सेवा है। इसलिए हमारे गुरुदेव बताते हैं, सबके गुरुदेव बताते हैं कि धाम में ना बिना सेवा के जाना नहीं चाहिए, और जाना ही है अगर तो 3 दिन के ऊपर ज्यादा रहना नहीं चाहिए, वो भी भक्तों के संग में ही जाना चाहिए, अकेले कभी भी धाम में आना नहीं चाहिए, और अकेले कभी घूमना भी नहीं चाहिए धाम में, जहां पर भी भक्तों का सहारा लेकर ही जाना है, बहुत रिस्क है यहां पर हर चीज में। तो धाम को एंजॉय करने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर आप धामी भगवान को आनंद देने का प्रयास कर रहे हैं, अपने आप आपको एंजॉयमेंट मिलेगी, आपको सेपरेटली प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे पेड़ को जड़ को पानी देंगे तो अपने आप शाखाओं को, पत्तों को, फूलों को, सबको पानी मिलेगा और फल भी निकलेगा आराम से। उसी तरह से धामी की सेवा में रहेंगे तो आपकी खुशी गारंटेड है, आपको इतना आनंद मिलेगा ना उतना घूमने पर भी नहीं मिलेगा, यहाँ वहाँ की कथा सुन के, यहाँ वहाँ का दर्शन करके भी नहीं मिलेगा। सेवा होना चाहिए, सेवा का अधिष्ठान होना चाहिए। इसलिए गुरुदेव बताते हैं कि यहाँ पर आना है, दर्शन करना है, तो पहले सेवा करो, सेवा करके धाम की और धाम वासियों का आशीर्वाद प्राप्त करो, फिर वो आप तैयार हो जाएंगे दर्शन करने के लिए। अपनी सेवा कीजिए, आशीर्वाद लीजिए ब्रजवासियों का और धाम का, फिर दर्शन करने को जाइए, फिर आपको दर्शन का इतना लाभ मिलेगा जो आमतौर पे नहीं मिलेगा। ये सब इसकी सीक्रेट्स हैं पूरे, करना वही है, दर्शन करने का कोई मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब कृपा लेकर दर्शन करेंगे तो दर्शन देने वाले भी दर्शन देंगे आपको प्रेम से, हृदय में आनंद भर देंगे आप, स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल ब्लिस। इसलिए अभी आप आए हो तो आपके मन को आप तैयार रखो, मौसम बदल रहा है, इसमें हेल्थ भी खराब हो सकती है, तो सावधानी से रहो, क्योंकि आपको सेवा छोड़ना नहीं, क्योंकि यहाँ पर आकर सब बीमार हो गए तो एडमिट होना होना पड़ेगा, हमारे इसमें IV लगाना पड़ेगा आपको सबको, है ना। तो सेवा देने आए थे, सेवा लेके बैठ गए, फिर टाइम भी गया उसमें, फिर जाने का समय, टिकट है तो जाना ही पड़ेगा आपको। तो इसलिए फोकस जरूरी है, फोकस फोकस फोकस, अपनी चेतना को एक जगह पे रखो, यहां वहां भटकने मत दो, जो कहा गया है उतना ही करो, उसके ज्यादा रख के अपना दिमाग लगा के कुछ करो मत, तो आपको झटका मिलेगा निश्चित रूप से। और यहां पर झटका मिलेगा ना तो बम्बई में उसी की याद आएगी आपको, अरे मेरा पॉकेट मारा गया, अरे मेरा मोबाइल चोरी हो गया, है ना, अरे जब मैं उधर गया था ना नंदगांव, उधर मेरा पॉकेट मारा, उधर मेरे को बंदर काटा, देखो अभी भी 4 टाके लगाए, दाग हैं, याद दिलाते रहेगा आपको। तो ऐसी यादें लेकर आपको जाना नहीं, आपको सेवा के आनंद का अनुभव लेके जाना है, चेतना रियलाइजेशन साक्षात्कार अनुभूति लेके जाना है। इसलिए थोड़ा समय क्यों ना हो उस चेतना में रहना है। और देखिए यहाँ पर ना 9 करोड़ लोग आते हैं बरसाने में हर साल, लेकिन कुछ ही सैकड़ों या तो 1,000 लोगों को यहाँ पर सेवा प्राप्त होती है, बाकी अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना खेती कर रहे हैं, अपना धंधा कर रहे हैं, वो तो रूटीन है, फैमिली लाइफ है, वो यहाँ पर रहेंगे तो भी करेंगे, बम्बई में भी करेंगे और दिल्ली में भी करेंगे, उसमें क्या बड़ा बड़ी बात है। सेवा जो होती है ना, भगवत सेवा, भगवत भक्तों की सेवा और भगवान की सेवा, कुछ ही चंद लोगों को प्राप्त है, परसेंटेज क्या है उसका 9 करोड़ में, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो छोटे से परसेंटेज में आप हो सब लोग, आपका नंबर लगा है उसके अंदर लॉटरी, तो वो प्राप्त होने के बाद मन भटकता रहेगा तो लॉटरी का क्या लाभ है, लॉटरी तो मिल गई आपको, फिर उसके अनुसार आपको चलना होगा, फिर जो लॉटरी लगी है उसका पूरा लाभ मिलेगा। धाम तो बहुत महान है यहाँ का, यहाँ तो पूरे ब्रह्मांड में भगवान को भारत देश बहुत प्रिय है, पृथ्वी पहले प्रिय है ब्रह्मांड में, क्योंकि पृथ्वी में क्या होता है, पृथ्वी में जो जीवन है ना उसमें ज्यादा दुख है और कम सुख है, तो आप बोलेंगे अच्छा क्या है उसके अंदर, अच्छा ये है कि जब ज्यादा दुख होता है तो भगवान की याद ज्यादा आ सकती है, आप पुकार सकते हो, कहाँ हो आप हो कि नहीं हो ऐसे पुकार सकते हो। स्वर्ग में क्यों अच्छा नहीं है, क्योंकि तो स्वर्ग में इतने सुख है ना कि भगवान की जरूरत ही क्या है, नो नीड, जरूरत ही नहीं भगवान की। लेकिन पृथ्वी बैलेंस, मतलब बहुत बढ़िया बैलेंस है उसके अंदर, अधिक दुख है और कभी कभी सुख का ऐसा मतलब आभास है, लेकिन दुख नहीं होना ये एक सुख है आज दुख नहीं है भाई, आज कुछ कटकट नहीं हुआ, आज सुखी दिन गया, ऐसा कोई बाधा नहीं आई, कोई संकट नहीं आया, मतलब आज सुखी दिन है, ये यहाँ के सुख की व्याख्या है। लेकिन अच्छा है क्योंकि फिर लगातार हम लोग भगवान के दर्द में गया ना, भगवान ज्यादा याद आते हैं, तो पृथ्वी भगवान को पसंद है, पृथ्वी में भारतवर्ष ज्यादा पसंद है भगवान को, इसलिए भगवान ने सारे अवतार यही लिए हैं, एक संत मुसलमान देश में, एक संत इंग्लिश देश में, उसके अलावा सारे इधर ही है हमारे पास, उसमें भारत वर्ष में जो भी जन्म लेते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अनेक जन्मों के पुण्य के बाद अलग देशों में जन्म लेकर, अलग योनियों में जन्म लेकर अगर आदमी बहुत सेवा करता है तो फिर वो भारतवर्ष में जन्म लेता है, वो भी मनुष्य लेकर जन्म लेता है, तो वो परम भाग्यवान है, क्योंकि जिस भूमि में संतों के चरण लगे हैं, भगवान के अनेक अवतारों के चरण लगे हुए हैं, पवित्र स्थान है, लीला स्थलियाँ हैं, वहाँ पर जन्म लेना ये एक बड़े भाग्य की बात है, यहाँ पर रहने को मिलना भारत में, यहाँ पर निवास रहना है, हमारा देश गरीब होगा शायद, अभी अच्छा हो रहा है, लेकिन लोग सोचते हैं कि भिखारियों का देश है वगैरह वगैरह, लेकिन इसमें जो आध्यात्मिक शक्ति है वो किसी भी देश में नहीं है, यहाँ तक कि यहाँ पानी भी फ्रेश मिलता है, पता है आपको? बाकी देशों में वही टॉयलेट का पानी रिसाइकल करके आपको पिलाते हैं, शुद्ध होता है एकदम, बहुत बिना बैक्टीरिया फ्री होता है एकदम, लेकिन रिसाइकल्ड होता है वो। कई देश हैं ऐसे, धनी देश हैं, जहाँ उनका अपना पानी नहीं है, वहाँ पर उसी पानी को घुमाते हैं। कोई लोग समुद्र का खारा पानी को मीठा पानी बना के पीते हैं। भारत में ऐसा नहीं है, चाहे उतना सूर्य प्रकाश है, चाहे जितना पानी है, फिर उसमें भगवान को अपना ब्रजमंडल जो है बहुत पसंद है, भगवान को बहुत ही प्रिय है, इसलिए वो उसमें जन्म लेते हैं, उसमें लीला करते हैं, उसमें रहते हैं। बाकी धाम में भी आते हैं, लेकिन इस धाम में क्यों ज्यादा प्रेम है उनको, इसमें वो ना अपना भगवान का पद छोड़ के आते हैं। बाकी सब में वो नरसिंह आते, तो सिंहाचलम में नरसिंह भगवान है, अयोध्या में राम भगवान है, द्वारका में द्वारकाधीश भगवान है, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान है, श्रीरंगम में रंगनाथ जी भगवान है, सब जगह भगवान के रूप में। नर नारायण बनकर भी आते, तपस्या करते भी, भगवान तो है ही वो, सब जानते भी हैं उनको, लेकिन वृंदावन में सब लोग वो भगवान का पद छोड़ के आते हैं, एक सामान्य व्यक्ति बनकर खेलते हैं उधर। तो सारे वृंदावन धाम में भगवान बिना चप्पल के घूमते हैं, कोई पादत्राण नहीं पहनते हैं, नंगे पैर घूमते हैं। तो भगवान के पैर का डायरेक्ट स्पर्श जो है ना, वो केवल ये भूमि को हुआ है। इसलिए जब भगवान ने ऐलान किया ना गोलोक में कि मैं आ रहा हूँ अवतार लेने के लिए, पृथ्वी बहुत खुश हो गई, कुछ जानती थी कि वो जब ये अवतार में आएंगे कृष्ण मथुरा मंडल में, तो वो नंगे पैर घूमेंगे और मुरे ऊपर उनके चरणों के चिन्ह उत्पन्न होंगे, वही मेरे अलंकार होंगे, वही मेरा मान और सम्मान होगा कि इनके चरण कमल के चिन्ह मेरे ऊपर गिरे हुए हैं। और क्योंकि उनके चरण कमल के चिन्ह यहाँ पर लगे हुए हैं, पूरे जितने भी संत हैं भारतवर्ष में और जितने भी देवता लोग ऊपर नीचे जितने भी हैं, तो सब लोग यहाँ पर आकर उनका चरणों का रज देना चाहते हैं। कहीं मिलती नहीं है, द्वारका में ऐसा वर्णन आता है कि इतना बड़ा मखमल फैला के रखा है सब जगह पर, रास्ते पर भी, कि भूमि को स्पर्श होने का कोई चांस ही नहीं है। उस पर भी भगवान को चलने का दिल हुआ तो ऐसा रत्नों से भरा हुआ चप्पल पहनते हैं वो, जूता। हम लोग चप्पल जूता एक बहुत खराब शब्द है, वो क्या कहेंगे उनके लिए, क्या कहते, पहनते वो चप्पल जो जिस पैर में जो पहनते हैं ना, वो इतना ऐश्वर्य संपन्न होता है, इतनी आभा प्रकाश निकलता है उसमें से, ऐसे तैयार रहते हैं वो उसमें से, फिर चलते तो कोई रज वज का सवाल ही नहीं उठता है। फिर भी वो तो रज है क्योंकि वो चल रहे हैं ना अल्टीमेटली, लेकिन प्रत्यक्ष स्पर्श जो है ना वो केवल यहां पर है। गाय चरा रहे हैं, वो भी नंगे पैर चरा रहे हैं, घर पे भी, इधर भी उधर भी, कोई राजवस्त्र नहीं है, कोई राज मुकुट नहीं है, वो वनमाला है, मोर मुकुट है, सिंपल तरीके से घूमते हैं। फिर भी यहाँ का ऐश्वर्य स्वर्ग से भी उच्च, वैकुंठ से भी उच्च माना गया है। सारे वैकुंठों का भी धन इकट्ठा करेंगे तो यहाँ के रज का कण नहीं खरीद सकते, क्योंकि भगवान के पैरों का स्पर्श हुआ है उनको। लेकिन समझने वाली बात यह है कि सारे ब्रज में सभी लोग भगवान के चरणों की रज लेने के लिए भाग भाग के आते हैं, और वो भगवान जिनके चरणों की रज सब लोग चाहते हैं, वो यहां पर भाग भाग के आते हैं राधा रानी के चरणों की रज लेने के लिए। इसलिए स्पेशल जगह तो वृंदावन धाम है ही, वो स्पेशल में भी और एक स्पेशल एरिया है, अंतःपुर कह सकते हैं, अंतर कक्ष कह सकते हैं उसको, जिसमें राधा रानी रहती है, और वहां पर उनकी कृपा लेने के लिए वो आते हैं। बाकी देवता भी आते हैं, लेकिन बाकी देवता सब जगह आते हैं, लेकिन उनके साथ में यहां पर कृष्ण भी आते हैं, आते भी हैं तो के सखी बनकर आते हैं। कितना विशेष धाम है ये, सारा रस का प्रकाश यहां से होता है। रस नाम की वस्तु है ना, वो प्रेम भगवान के विषय में जो शुद्ध प्रेम पूर्ण सेवा होती है ना, वो भी इनके यहां से प्रकट होती है। इनके चरणों के नूपुर जो बजते हैं ना, उसमें से वेद निर्माण होते हैं। वही रस जो है वो कृष्ण रसराज मानते हैं उनको ना, वो रसराज वाले कृष्ण जो है वो रस यहीं से प्राप्त करते हैं, सोर्स है उनका, उनके खुद का सोर्स है वो रस का, उगम यहां पर है। कितनी विशेष जगह है, और यहां पर अगर आपको सेवा मिल रही है तो आप बड़े भाग्यवान हो, लेकिन भाग्यवान होने पर भी काम पूरा नहीं होता है, भाग्य का ज्ञान भी होना जरूरी है, भाग्य का अनुभूति जानकारी होना भी जरूरी होता है। कि हमको क्या मिला है, तो क्या मिला है उसको जानकारी देंगे, तो कैसे बच्चे को आपने उसमें हीरा पकड़ा देंगे तो क्या वो कैच कैच खेलेगा, तुम भी पकड़, मैं पकड़ता हूँ, तो गिर जाएगा बिल्डिंग के नीचे तो गुम हो जाएगा। तो उसको लगता है गेंद की तरह है ना ये, तो हीरा दिया उसको, लेकिन वो पता नहीं, उसको ज्ञान नहीं है। तो और कुछ ऐसे वो कथा आती है ना, तो वो किसी औरतों को दिया हीरा, तो उसने वो कपड़ा धोने के लिए उसका यूज़ किया, बड़ा अच्छा साबुन के ब्रश जैसा है वो, बच्चों को दिया तो कैच कैच खेला उन्होंने, लेकिन था वो हीरा, ज्ञानी व्यक्ति ने उसको जाके कबर्ड में रख दिया, किसी व्यक्ति ने उसको अंगूठी में रख दिया, क्योंकि ज्ञान था उसको उसका। तो ऐसी जगह पर जहां स्वयं भगवान आते हैं कृपा प्राप्त करने के लिए प्रेम की वजह, ऐसा नहीं कि वो राधा रानी सोचती नहीं कि देखो आ गए मेरे कृपा लेने के लिए, मैं इनकी स्वामिनी हूं, वो भाव ही नहीं है, वो खुद को उनकी सेवक समझते हैं, भगवान उनको अपनी उनकी सेवक सेवक समझते हैं, लेकिन दोनों का भाव पराकोटि का उच्च है। उस जगह पे आप लोगों को सेवा प्राप्त हुई है, और हमारे गुरुदेव का इतिहास है यहां पर, उनको भी साक्षात्कार यहीं से हुआ था, दुनिया भर ढूंढे उन्होंने भगवान को, यहां पर आके साक्षात्कार प्राप्त हुआ, यहां पर आपके दिशा प्राप्त हुई, यहां पर आके प्रेरणा मिली, फिर आगे एकदम गंभीर जो आध्यात्मिक जीवन है ना, वो शुरुआत उनकी यहीं पर थी। तो उन्होंने ऐसा वादा किया था कि जब मेरा साक्षात्कार यहाँ से शुरू हुआ है तो मैं यहाँ पर कुछ करना चाहता हूँ, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की भूमि के लिए कुछ अच्छा कार्य करना चाहता हूँ, और उसका परिणाम है ये बरसाना कैंप। उनकी जो इच्छा थी, क्या कहते हैं उसको, कृतज्ञता की जो भावना थी ना, कि कृतज्ञता के भाव से मैं कुछ करना चाहता हूँ, उसका परिणाम ये बरसाना कैंप है, और वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, उन्होंने इच्छाएं की थी, आज हजारों लोग उसमें लगे हुए हैं, हर बार कुछ नए आते हैं, कुछ पुराने भी आते हैं और लगे हुए हैं सेवा में। देखो आप लंदन से आए हैं, है ना, क्या आकर्षण है आपका, वो जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है ना, उसकी वजह से आप आ रहे हो, है ना, इज दैट राइट। और सब लोगों को वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस चाहिए, वो ही सही समाधान देता है, सेटिस्फैक्शन देता है लाइफ में, बाकी पैसा है सब कुछ है, लेकिन वो जो है ना, वो निरपेक्ष सेवा करने का जो आनंद है ना, जो आत्मा का स्वभाव है, वो सब जगह प्राप्त नहीं होता है, पैसे देकर भी प्राप्त नहीं होता है, पैसे मिलकर भी प्राप्त नहीं होता है, वो यहाँ पर अवेलेबल है। निरपेक्ष सेवा होती ना, उसमें आत्मा को खुद के लिए, स्वार्थ के लिए भी सही आनंद उसमें प्राप्त होता है, बाकी फल की अपेक्षा से सब दुनिया भर के लोग काम कर रहे हैं, उसमें क्या बड़ी बात है, सब लोग अपने फल के लिए काम कर रहे हैं, मुझे क्या मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा एक मौका है जो आत्मा का स्वभाव है, आत्मा जो स्वभाव रखती है, मूल स्वभाव, स्वाभाविक जो बात है आत्मा के लिए, वो है निरपेक्ष रूप से भगवान की और उनके भक्तों की सेवा करना। दिस इज कॉल्ड स्थाई भाव, बेस लाइन कॉन्शियसनेस आत्मा की वो है, टू सर्व सेल्फलेसली गॉड एंड हिज सर्वेंट्स। और वो भी मौका सबको नहीं मिलता है, आप पढ़ लिया, समझ लिया, सुन लिया भी कहीं भी, लेकिन कहाँ मिलता है वो मौका, वो पता नहीं आपको, कहीं अलग जगह पर हो आप, आपका संग जो है उतना परफेक्ट नहीं है जो आपको वहाँ तक पहुँचाएगा, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा है कि हमको ऐसा संग भी मिला है और यहाँ पर मौका भी है और हम आ भी सकते हैं, छुट्टी भी मिल रही है, टिकट भी मिल गया है, कैंप में नंबर भी लग गया है। हाँ, इतना सब होने के बाद में कितना ज़रूरी है हम लोगों को अपना चेतना को सही रखने के लिए, क्योंकि इतनी सारी व्यवस्था भगवान ने तो कर दी आपके लिए, एंट्री दे दी आपको, बाकी सब काम आपका है। इसलिए हमने सोचा कि कुछ आपको बताया जाए, जिससे अगर आपकी आज की कैपेसिटी, अभी की कैपेसिटी 50% की है, तो कल सवेरे 100% होनी चाहिए, आपकी खुद की कैपेसिटी, इसलिए आप यहां पहुंचे ना, खुद की भी होगी कुछ, लेकिन वो आज अगर 100% से कुछ कम है तो कल से 100% होनी चाहिए, और लगातार जितने भी दिन है उसमें 100% ही रहनी चाहिए, वो 99-98 भी नहीं होना चाहिए। तो हमारा होता है ना POT का मशीन लगाते ना उधर, पल्स ऑक्सीमीटर, उसमें से 100, 98, 97 ऐसा दिखाते रहते हो, देखते रहते कितना हो रहा है, ठीक है 96 तो ठीक है, लेकिन वाई 96, यू वांट 100, 100% सैचुरेशन मस्ट बी देयर। आज है और कल नहीं, ऐसा भी नहीं, आज है, कल है, परसों है, जाने तक है और हर समय है, ऐसा होना चाहिए। Always be at your best consciousness in Barsana, जिससे आपको पूरा लाभ मिलेगा। ऐसी पूंजी आपको मिल सकती है इतने छोटे निवास में कि एक ही यात्रा में आप ऐसा आपकी प्राप्ति हो सकती है कि इसी यात्रा के वजह से आप जीवन के अंत में भगवत धाम पहुंच सकते हैं। इतनी शक्ति इस एक छोटे से कालावधि की सेवा में है। इट्स जस्ट शॉर्ट पीरियड ऑफ सर्विस इन प्रॉपर कॉन्शियसनेस, वन टाइम कैन लीड यू बैक टू गॉड हेड एट द एंड ऑफ लाइफ। इतनी शक्ति है इसके अंदर, केवल सही तरीके से सही चीज करने से। फॉर एग्जाम्पल, इडली सब लोग बनाते हैं, लेकिन साउथ इंडियन लोग जो बनाते हैं ना, उसका स्वाद आप कितना भी कूदेंगे तो नहीं आएगा। वैसे ही आलू का पराठा जो है वो नॉर्थ इंडियन जो बनाते हैं ना, आप कितना भी महाराष्ट्र में कोशिश करो नहीं होगा। और जो खांडवी गुजराती बनाते हैं, वो किसी भी लोगों ने कितना भी हाथ मारा तो भी नहीं हो सकता वो, है ना। तेते पाहिजे जाति से, वो वहां पर वो इंपॉर्टेंट है, जिनका वो काम है वो बराबर करते हैं उसको। उस तरह से ही सब लोग सेवा करते हैं, लेकिन कुछ लोग उसमें से बहुत प्रगति करते हैं और कुछ लोग करते ही रहते हैं फिर भी कुछ होता नहीं है, विकार बने रहते हैं मन में, क्योंकि वो परफेक्शन जो है ना, वो फाइन ट्यूनिंग, फाइन परफेक्शन, माइक्रो परफेक्शन जो है ना, वो आना चाहिए उसके अंदर। और वो माइक्रो परफेक्शन प्राप्त होने के लिए सही सब व्यवस्था यहाँ पर है, धाम की भी है, इस सेवा की भी है, इस सेवा के पीछे प्रेरणा जो दे रहे हैं उनकी भी है। हर प्रकार से आपके लिए एक सुटेबल एटमॉस्फेयर यहाँ पर ऑलरेडी तैयार है, आपको भी उसमें फिट होना है। तो अगर कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो हमको सोचना चाहिए कि मेरे तरफ से कुछ कमी हो गई, बाकी सब कुछ यहाँ परफेक्ट है। जैसे कि अभी कल धूप थी, आज ठंड हो के बारिश आ गई, वो भी परफेक्ट है। ये मत समझना, अरे बाप रे मैं तो सोच के नहीं आया था, ऐसे कैसे हो गया। नहीं, आपके आत्मा के उद्धार के लिए क्या आवश्यकता है वो सब हो रहा है यहाँ पर, परफेक्ट है सब कुछ। जो भी आपके आत्म शुद्धि के लिए आवश्यक है वो पर्याप्त व्यवस्था जब आप आ रहे हैं तो हो रही है, सब जो डू द नीडफुल भगवान कर रहे हैं। हमको उसमें फिट होने के लिए बस कंप्लेंट नहीं करना है, ऐसा क्यों, ये कोई ठंड का समय है क्या, बारिश का समय है, मैं अभी सेवा में आ रही हूं तो भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। मुझे तो हड्डी में घुसती है ठंडी मेरी, और मुझे तकलीफ होती है उसमें। कैसे करूंगी सेवा, ऐसा हो सकता है मन में विचार। लेकिन जो भी स्थिति है इसको परिपूर्ण मानकर हमको सेवा अपनी करते रहनी है। डॉक्टर वो आंखों में छेद दे रहा है, उसको भी उसी नम्रता से छेद देना है, और जो उधर आलू काट रहा है वो भी उसी भावना से करना है उसको। एक आंखों को छेद दे रहा है, एक आलू को छेद दे रहा है, लेकिन सेवा भाव वही होना चाहिए। भगवान वो आंखों को छेद देने वाले को ज्यादा मार्क नहीं देंगे और आलू को छेद देने वाले को कम मार्क नहीं देंगे। वो तो भावग्राही है, वो तो देखते नहीं कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, नहीं कैसे कर रहे हैं वो देखते हैं। वो उनकी नज़र बहुत पक्की है, वो किसी की बड़ी सेवा से प्रभावित नहीं होते कि मैं बड़ा डॉक्टर हूँ, स्पेशलिस्ट हूँ, बम्बई में मेरे एक एक घंटे का इतना लाखों रुपए का इनकम होता है, और वो हमारे जो कैंट किचन चलाने वाले आए ना, उनका करोड़ों का बॉम्बे में बिजनेस है, पता है आपको, करोड़ों का बिजनेस है, कई जगह पर है, एकदम फूड बिजनेस में एक्सपर्ट है वो। कि हर साल सब कुछ छोड़कर, निरपेक्ष भाव से अपना बिजनेस का टाइम छोड़कर यहाँ पर आकर इस छोटे से किचन में देते हैं टाइम अपना, यहाँ तक कि वो ऊपर भी जाते नहीं मंदिर में देखने के लिए, दिन रात उधर लगे रहते हैं, बच्चे भी आते हैं वो भी रहते हैं, बोले हमारा राधा रानी इधर ही है भक्तों की सेवा में, उनको बेस्ट प्रसाद देना है हमको। तो उनको कम मार्क नहीं है, डॉक्टरों को ज़्यादा मार्क नहीं है, मेडिकल लोगों को ज़्यादा मार्क नहीं है, सब चेतना पर डिपेंड है, भगवान आपकी भाव क्या है उसको देख रहे हैं। तो एनीवे, ऐसे दिव्य धाम में आप सब लोगों का स्वागत है, और आपको बेस्ट ऑफ लक भी है ये सब चेतना को तैयार करने में। तो ये धाम का इतिहास भी थोड़ा बताना मैं इच्छा चाहता हूँ। कई इतिहास है इनके वैसे, लेकिन बज्रनाभ ने ये विग्रह बनाए थे सबसे पहले, राधा रानी का विग्रह जो है ना, लाडली लाल का, वो बज्रनाभ ने बनाया था। भगवान जब यहाँ से अंतर्धान हो रहे थे ना, लीला समाप्त करके ब्रज में, ब्रजवासियों को, ब्रज धाम को पूरा आनंद देते हुए, जब लीला को समाप्त होने का समय आया तो भगवान ने राजा परीक्षित को और उद्धव को और वज्रनाभ को, इनको बता के रखा था क्या क्या आपको सेवा करना है मैं जाने के बाद। उसमें बज्रनाभ जो है उनका ग्रेट ग्रैंडसन है, प्रपोत्र, उनको बताया था कि आपको धाम में जहाँ जहाँ मैंने जो कुछ किया है ना उसको स्थापन करना है, अच्छी तरह से मेंटेन करके रखना है, ताकि आगे वाली पीढ़ी जो आएंगे उनको मेरा लीला स्थलीय उनका पूरा लाभ मिलेगा। तो बज्रनाभ ने बहुत बड़ी सेवा किया, वो सबसे श्रेष्ठ धाम सेवक है, जगह जगह भगवान के विग्रह बनाए, स्थापन किए। 90% विग्रह जो है ना वो उन्होंने बनाए हुए हैं, कुछ स्वयं प्रकट हो गए हैं, राधा रमन जैसे विग्रह स्वयं प्रकट हो गए हैं, कुछ दामोदर जैसे विग्रह रूप गोस्वामी ने अपने हाथ से बनाए हैं, वो इतने छोड़कर बाकी सब बज्रनाभ के द्वारा बनाए गए हैं, उसमें से ये विग्रह हैं। और भगवान की लीला ऐसी है कि कुछ समय के लिए वो विग्रह भी रहे, बाद में भगवान की इच्छा से वो लुप्त भी होते हैं, और फिर किसी के स्वप्न में आते हैं, फिर प्रकट भी होते हैं। तो ये जो विग्रह लुप्त हो गए थे वो 400 साल पहले नारायण भट्ट गोस्वामी के स्वप्न में राधा रानी आई, उन्होंने बताया कि मेरे विग्रह यहाँ पर है, उसको निकालो। तो आज भी ऊपर जाएंगे ना तो एक जगह आती है जहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है, उसके नीचे एक छेद आता है, छेद उसमें वो चरण चिन्ह है जहाँ पर से वो दोनों विग्रह लाडली लाल के प्रकट हुए थे, फिर वो वहाँ पर स्थापन किए गए। तो इतिहास ऐसा बताता है कि एक दिलीप राजा थे, दिलीप राजा जो सूर्यवंशी थे, दो वंश होते हैं पृथ्वी को चलाने के लिए, दो वंश में क्षत्रिय आते हैं, एक चंद्रवंश और एक सूर्यवंश। चंद्रवंश में कृष्ण भगवान का जन्म है और सूर्यवंश में राधा रानी का जन्म है। तो उसमें बहुत पीढ़ियों पहले दिलीप राजा थे जो बहुत बड़े भक्त थे, गौ भक्त भी थे बड़े, लेकिन एक बार जब स्वर्ग में ऐसे गए थे, उस समय लोग स्वर्ग में भी जाया करते थे, जैसे हम लोग यहाँ से अमेरिका का वीज़ा निकाल के जाते हैं ना, वैसे वो स्वर्ग में जाते थे लोग, स्वर्ग के लोग भी यहाँ पर आते थे, यज्ञ के बहाने हैं और कोई चीज़ है, अर्जुन भी गए थे ना स्वर्ग में, तो द्वापर युग तक होता है, बाकी सब कलयुग में कुछ नो वीज़ा ओनली ईयर गो अराउंड ईयर ओनली, वो भी नहीं आते, आप भी जाना नहीं है, बस दरवाज़ा बंद। तो वो गए थे उधर, तो उधर जाके ना गौ भक्त होने पर भी कामधेनु गौ को दंडवत करना भूल गए, मतलब ऐसे ही दुर्लक्ष हो गया उनकी तरफ से, उनको पता भी नहीं है ये ऐसा हुआ करके। लौट के आए तो कई साल तक संतान नहीं उनको, तो वशिष्ठ गुरु जी को बुलाया, महाराज जी क्या बात है हमको संतान नहीं हो रही है। तो उन्होंने ध्यान लगाया तो देखा, अरे ये तुम्हारे हाथ से तो कामधेनु का अपराध हुआ है, इसकी वजह से आपको निपुत्र होने का छाप लगा हुआ है, तो महाराज जी कुछ बताइए उपाय। तो उन्होंने कहा कि उसकी बेटी है नंदिनी कामधेनु की, उसकी आप सेवा करो, फिर आपसे अपराध से मुक्त हो जाओगे। तो बड़े प्रेम से, वैसे तो गौ भक्त थे ही वो, लेकिन अनजाने में अपराध किया था, तो वो नंदिनी की बहुत सेवा की तो उस शाप से मुक्त हो गए, फिर उनको पुत्र हुआ। और ऐसा कहते हैं कि वो दिलीप राजा का परीक्षा भी किया गया, देवता लोग सिंह बनकर आए और किसी गाय का वध कर रहे थे, तो उस गाय के लिए उसने अपना सिर दे दिया, मतलब तो गाय को मत मारो मेरा सिर ले लो, तब देवता प्रकट हो गए और उन्हें आशीर्वाद दिया उनको। फिर उनके वंश में रघु भगवान हुए, रघु है ना, रघु, रघु भगवान नहीं, रघु राजा, जिसके नाम से हम रघुनाथ जी कहते हैं, रघुवंश कहते हैं प्रभु रामचंद्र का, वो रघु राजा हुए उनको पुत्र के रूप में। और फिर रघु राजा के वंश में प्रभु रामचंद्र का जन्म हुआ, दशरथ महाराज, फिर प्रभु रामचंद्र हुए। और फिर उसी वंश में अभय कर्ण हुए राजा, और उस वंश में राजा रसंग आदि में आए, और कहते हैं रसंग राजा ने बरसाना एक राज्य के रूप में स्थापन किया। फिर रसंग राजा के वंशज के रूप में फिर वृषभानु महाराज आए, ऐसा इसका एक इतिहास है, एक लाइन का इतिहास है। दूसरा इतिहास यह है कि तीन महासतियां थी जो वैकुंठ में निवास करती थी हमेशा। तो एक बार वो वैकुंठ में भगवान का दर्शन करने आई, तो वहां पर वो चार कुमार खड़े थे, पता नहीं सब जगह होते हो, कई जगह उनका मेंशन आता है, एक जगह पर ना, हम लोग तो जय विजय की कहानी पढ़ते हैं तो उसमें बार बार आता है कि वो जय विजय को शाप दिया उन्होंने, लेकिन कई जगह पर उनका क्या कहते हैं इन्वॉल्वमेंट है। तो वहां पर थे वो, लेकिन कैसा है ना, हमारी जो दृष्टि होती है ना वो कंडीशनड होती है ना, बद्ध होती है, वो आप दाढ़ी वाला कोई लंबा चौड़ा तो बोले वो साधु आदमी महात्मा है, और कोई ऐसा गरीब दिखने वाला होगा तो आप उसको देखेंगे नहीं, लेकिन हो सकता है वो सुदामा होगा, बहुत बड़ा संत। संत दिखता नहीं है वो, लेकिन संत दिखने में नहीं थोड़ी होता है संत कोई। तो वैसे ये 4 साल के बालक थे, अपने योग बल से उन्होंने अपने आप को 4 साल का रखा था, ताकि उस शरीर में कभी बड़ा होने के बाद काम वासना उत्पन्न होगी, फिर शरीर संबंध होगा, वो चाहिए ही नहीं हमको कुछ। 4 साल का ही अपना योग बल से बना के रखा था, और 4 साल के होने की वजह से वो नग्न घुमा करते सब जगह पर। कोई अगर 4 साल का बालक अभी कोई नग्न आएगा तो आपको कोई परेशानी है क्या उसके अंदर? कोई परेशानी, बालक है वो नग्न हो सकता है, क्या परेशानी? तो 4 नग्न बालक थे, तो उन्होंने उनको कुछ समझा नहीं उनके लिए कुछ, तो उनको प्रणाम न करने की वजह से उनको शाप प्राप्त हुआ, क्या आपको पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। अब आप बोले उसमें बड़ी बात क्या है, हम सबने लिया ऑलरेडी पृथ्वी पर जन्म, व्हाट इज द प्रॉब्लम, इतना दुखी होने की जरूरत क्या है, हम ऑलरेडी यहां पर रहते हैं, आप भी आ सकते हो रहने के लिए। लेकिन नहीं, जैसे कि अभी समझो कोई सुअर है, सुअर वो गटर में रहता है, वो फ्रेश फ्रेश वहां से जो आता है वो खाते रहता है, तो अगर आपको कहा जाए कि आपको सुअर बन जाओ, शाप मिल गया, तो सुअर बोलेगा उसमें क्या बड़ी बात है, आ जाओ साथ में रहो, खाना पीना सब मिल रहा है, मादा सुअर भी है, परिवार भी है, बिरादरी है, कोई चिंता की बात नहीं, इतना दुखी क्यों होते हो आप? लेकिन आप जानते हो कि आप दुखी क्यों हो, क्योंकि आप उच्च चेतना वाले जीव हो, आप हलवा पूड़ी खाते हो, और सुअर बनने के बाद क्या खाना पड़ेगा पता है ना आपको? तो वो सुअर को कोई कष्ट नहीं है उसका, आप अगर वहां ज्वाइन होंगे, लेकिन आपको कष्ट है वहां ज्वाइन होने में, क्योंकि तो आपकी चेतना उच्च है। वैसे ही हम लोग मनुष्य जीव है, वो पृथ्वी पर ये मरने वाला शरीर धारण करके आराम से जी रहे हैं, हमको कोई परेशानी नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि भी है यहाँ पर, आदि भौतिक क्लेश भी हो रहे हैं, मच्छर भी काट रहे हैं, प्रकृति बारिश बरसात कर रही है, कभी ठंड दे रही है, कभी गर्मी दे रही है, हमको सब ओके है, इसमें क्या है, पार्ट ऑफ लाइफ, उसमें क्या है, व्हाट इज द बिग थिंग, रोग आया तो क्या प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल है ना, जाएंगे, तो हमको कुछ समझता नहीं है। लेकिन जो स्वर्गवासी हैं लोग, उच्च देश उच्च लोक के लोग हैं, उनके लिए यहां पर आने की बात भी बहुत घिलौनी है। जय विजय भी उन्होंने बहुत निगोशिएट किया, पहले उनको बोला 7 बार जाना पड़ेगा आपको भक्त बन के, बोले कुछ कम समय वाला कुछ प्रोजेक्ट है क्या आपके पास, लेस टाइम वाला, क्योंकि तो ज्यादा टाइम रहना पड़ेगा ना उधर, भक्त हो तो क्या हुआ, गर्मी सर्दी बीमारी तो भक्तों को भी आती है कि नहीं आती है, उधर थोड़ा कम टाइम वाला बताओ, तो बोले ठीक है 3 जन्म वाला एक प्रोजेक्ट आपके लिए है, लेकिन राक्षस बन के जाना पड़ेगा, पर चलेगा अपने को, राक्षस बन के जाएंगे लेकिन कम समय रहेंगे तो अच्छा है, भगवान मारेंगे तो भी चलेगा, कोई बदनामी होगी तो राक्षस के रूप में तो भी चलेगा, आगे वाली 10-50 पीढ़ियां भी हमारा राक्षस के नाम से नाम लेगी, निंदा करेगी, रावण है तो ऐसे गाली बनेगी हमारा नाम, चलेगा इट्स ऑल राइट, बट यहां कम से कम समय रहना है। देखो उनका भाव देखो आप, जहां पर हम लोग आराम से रह रहे हैं वहां पर वो कॉम्प्रोमाइज नेगोशिएट कर रहे हैं, तो वो दुखी हो गए तीनों महासतिया, तो भगवान विष्णु स्वयं बाहर आ गए, ओके दुखी मत हो ना, ये मेरी योजना है, आपको सेवा देने की मेरी योजना है, तो ये निमित्त है ऐसा आपको शाप का, लेकिन आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो फिर वो 3 महासतियां, उनका जन्म हुआ पृथ्वी पर, उसमें से एक महासती पार्वती की माँ बनी, एक महासती सीता की माँ बनी, और एक महासती राधा रानी की माँ बनी। तो कीर्तिदा जो है ना, वो पहले कलावती के रूप में जन्म लिया उसने, और कलावती का विवाह सुचंद्र के साथ में हुआ, दोनों बड़े तपस्वी और राजा वंश के थे, लेकिन बड़े तपस्वी भाव के थे। सुचंद्र का विवाह जब कलावती से हुआ, वो किसी मुनि के कृपा से उनका विवाह हुआ, आशीर्वाद से, तो उन्होंने कहते 12,000 साल तप किया, वो भी हमारे पृथ्वी के साल नहीं, स्वर्गीय साल, सेलेस्टियल ईयर्स, जिसमें कहते 6 महीने का दिन होता है एक, वैसे 12,000 साल तप किया उन्होंने, वो भी कैसे, आज एकादशी है ना, आपने एकादशी किया ना, क्या खाया आपने आज, याद है कुछ क्या खाया, साबूदाना वड़ा खाया, फिर पूड़ी, कुटुक की पूड़ी खाई, और क्या खीर खाई कि नहीं, सामा की। हाँ कितना बढ़िया उपवास है तुमको अपना, है ना। इतने बड़े फीस्ट अपने इस्कॉन में, एकादशी को बड़ी फीस्ट होती है, मालूम है आपको? एकादशी फीस्ट 15 आइटम होते खाली, बस ज़्यादा नहीं होते। हमने कई बार खाए हैं उसको, क्योंकि हमने वैसे ही उपवास शुरू किया था हमारा। बताया अगर कौन, चिंता मत करो आप उपवास को, आपको आदत नहीं ना, आप इस्कॉन में आ जाओ, एकादशी की फीस्ट खाओ, धीरे धीरे आदत बन जाएगी, फिर उपवास सही हो जाएगा। हम लोग वो 15 आइटम का फीस्ट खाने के बाद भी उस दिन बिस्तर में लेटे थे पूरा दिन, इतना कमजोरी आई थी हमको। तभी हम फाइनल MBBS में थे। को बहुत प्रीचिंग किया गया था, आपको उपवास करना है तो आपको सब सेटिंग करके दिया था, आपको ये खाना है वो खाना है, खाली धान्य मत खाओ, बाकी सब पेट भर के खाओ। तो धीरे धीरे फिर हम लोग उपवास के आदि हो गए। इन्होंने कैसा उपवास किया पता है आपको? पेड़ से जो सूखे होकर पत्ते गिर जाते ना कड़क कड़क, वो खाकर गया उपवास। ब्रह्मा जी ने भी ऐसा ही तब उपवास किया था, इतना कठोर तपस्या किया भगवान के ध्यान में, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, उससे आशीर्वाद दिया, क्या चाहते हो? तो सुचंद्र राजा को कहा कि आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो कलावाजी को बड़ा गुस्सा आया, अरे मेरे होते हुए उनको कैसे मोक्ष दे सकते आप? फिर मैं तो विधवा बन के रहूंगी ना, आप उनको मोक्ष देंगे, उनका नाम होगा, वो जाएंगे मोक्ष लेकर, मैं तो यहां रहूंगी अकेली, ऐसे कैसे दे सकते आप? तो महासती थी वो, ब्रह्मा जी को भय लगा उनका, कह रही इसका क्रोध हो गया, इसका शाप मिल गया तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने तुरंत उसको एक संभाल लिया, उसको कहा कि डोंट वरी, एक काम करो आप दोनों ना मेरे लोक में रहो, हमारे लोक में, ब्रह्मा लोक में रहो, और तब तक रहो आराम से आप दोनों, ब्रह्मा लोक का सुख ले लो आप, जब द्वापर के अंत में भगवान आएंगे ना तभी आप वापस जन्म लेना, और भगवान की अंतरंगा शक्ति आपकी कन्या बनेगी। कैसे भी करके संभाल लिया अपने आप को, वरदान देकर जो भी उनकी कैपेसिटी थी उस सब उसमें अपने आप को बचा लिया। फिर वो लोग ब्रह्मा लोक में रहे कई सालों तक, कई युगों तक। जब ये द्वापर का अंत आया तब, भगवान कृष्ण का जब जन्म का समय आया, तभी ये कीर्तिदा और वृषभानु महाराज बने दोनों, और फिर नंद महाराज के और कई गोपों के सलाह से इनका विवाह हुआ, और फिर राधा रानी इनको कन्या के रूप में प्राप्त हुई। क्योंकि राधा रानी ने वहां पर कहा था ना कि मैं नहीं जाऊंगी नीचे, वृंदावन में गोवर्धन, और वृंदावन गोवर्धन जमुना नहीं रहेगी तो मैं नहीं आ सकती। तो भगवान ने कहा कि उनको हमने ऑलरेडी भेज दिया है आपके आनंद के लिए, फिर भी उन्होंने कहा कि हम आपके बिना किसी का दर्शन नहीं करेंगे। तो जन्म हुआ, फिर भी वो अंधी बहरी गूंगी थी, और जन्म की भी बड़ी कहानी है उनकी। वो तो विंध्याचल की बेटी के रूप में जन्म हुआ था उनका, विंध्याचल पर्वत के, पार्वती हुई हिमालय को। तो विंध्य को लगा कि इतनी श्रेष्ठ कन्या प्राप्त हुई पार्वती, महादेव के साथ उसका विवाह हुआ, महादेव जैसा पति प्राप्त हुआ, ऐसी कन्या हिमालय को प्राप्त हुई, तो मुझे उसकी से भी, उससे भी श्रेष्ठ कन्या होनी चाहिए जिसका होने वाला पति महादेव से बढ़कर होगा, महादेव को परास्त कर सकता है, महादेव से श्रेष्ठ हो सकता है, ऐसा पति जिसका होगा, ऐसी कन्या मुझे प्राप्त हो, इसलिए उसने तपस्या किया। तो उसको राधा रानी और चंद्रावली दो कन्याएं प्राप्त हुई। अभी वो तपस्या का जो नॉलेज सबको वर्ल्ड में हुआ था कि ये तपस्या कर रहा है ऐसी कन्या के लिए जो महादेव को भी परास्त कर सकते हैं, ऐसा पति मिलेगा उस योग्यता की कन्या प्राप्त करने के लिए इन्होंने तपस्या किया, ये सबको पता था, कंस को भी पता चला। तो कंस ने सोचा कि इसको मैं किडनैप करूंगा और मैं शादी करूंगा इससे, ताकि मैं महादेव को परास्त करने के योग्य हो जाऊं। समझ में आया को गणित कैसा होता है? हर एक अच्छी चीज का एक कहीं ना कहीं बुरा रिपरकशन होते रहता है। समझो आपको लॉटरी लग गई 1 करोड़ की, तो आप बड़ी खुशियां मना रहे हैं, पार्टी दे रहे हैं, लेकिन कहीं चोरों के मन में भी चांदनी चमक रही है कि इसको लूट सकते जाके, है ना? तब तक कोई आपका सोचेगा नहीं, तो आप आनंद ले गए, लेकिन फिर आपके आनंद में कोई डाका डाल के आपका पैसा लेके चला जा सकता है बंदूक दिखा के। तो भौतिक दुनिया ऐसी होती है, हर अच्छी चीज के पीछे कुछ ना कुछ बुरा असर मिलेगा आपको। इट इज नॉट प्योर, खीर मिलेगी थोड़ा सा मट्टी गिर जाएगा उसके अंदर, खीर तो बढ़िया है बहुत, लेकिन थोड़ा सा उसमें गिर जाएगा ना, सारा खीर का आनंद खराब हो जाएगा उसके अंदर। तो ये बात कहां से निकली थी बताइए? कंस को पता चला कि ऐसे कन्या का जन्म हुआ है, तो कंस ने पुतना को भेज दिया, ले जाओ इसको किडनैप करके लेके आओ। तो पुतना आई खेतरी आकाश से उड़ते हुए, हाँ तिनके को अभिमंत्रित करके विमान बना के इस पर बैठकर आई, और जहां पर इनके जन्म की विधियां हो रही थी, यज्ञ हो रहे थे, वहां पर आके उठाया दोनों को और चली गया आकाश में। तो विंध्य देखते रहे, अरे क्या हो गया, अचानक इतना बड़ा तपस्या करके इतना लाभ हुआ, एक झटके में कोई ले गया उसको, राक्षसी। तुरंत ब्राह्मणों को बुलाया, बैठो यहां पर अभी, इससे मंत्र बोलो वो जल जाएगा आकाश में। ऐसे वो पुराने जमाने में हुआ करता था, अभी मिसाइल देते, मिसाइल्स यहां से मिसाइल भेजते हैं तो टारगेट करके उसको उड़ा देते हैं कई हजारों किलोमीटर तक। तभी मिसाइल नहीं थे, ऐसा मंत्र जपते थे, ऐसे आहुति अर्पण करते थे, वो आदमी वहां पर जलता था आकाश में। तो तुरंत सब बैठ गए, वो यज्ञ आरंभ किया, तो वो आकाश में पुतना जो उड़ रही थी ना दोनों के लेकर बालिकाओं को, उसके शरीर में बहुत अग्नि तत्व का ऐसा विकास हो गया, बहुत ज्यादा जलने लगी, वो तड़पने लगी। तो उसने एक कन्या को छोड़ दिया, कहते वो कन्या जो है ना वो विदर्भ देश में गिरी और राजा भीष्मक को प्राप्त हुई, जो आगे जाकर रुक्मिणी के पिताजी बने ना, उसके पहले उनको वो कन्या प्राप्त हुई। 5 साल तक उसने, राजा भीष्मक ने उस कन्या का लालन पालन किया। फिर पूर्णमासी आई और वो लेकर ब्रज में आई, उसका नाम था चंद्रावली। फिर उसका जाना कहाँ था उसको, कंस के देश में ना, मथुरा नगरी में। तो विदर्भ कहाँ आता है, बीच में आता है, विंध्याचल कहाँ आता है, महाराष्ट्र में आता है। तो वहां से वो उड़ रही है, तो पहला गिर जाता है विदर्भ में, फिर भी वो आगे उड़ रही है, जलते हुए भी उड़ रही है, तड़पते हुए। आगे जाकर बहुत ज्यादा हो गया, तो फिर वो मथुरा में बच्चे को फेंक दिया उसने। और वो बालिका जो है ना, वो उस समय अराउंड 1 ईयर की हो गई थी, तो वो वृषभानु महाराज के कुंड में गिर गई, जमुना की कुंड है ना उनका सरोवर, वृषभानु कुंड, वहां पर गिर गई। और जब वो गिरी तो वो ऑलरेडी कुछ 1 साल वाली थी। तो सुबह जब स्नान करने गए वृषभानु महाराज, कई साल से उनको संतान प्राप्ति नहीं हुई है, ना नंद महाराज को हुई है ना उनको हुई है। दोनों मित्र थे तो सलाह करते हैं कि चलो जमुना जी का किनारा बहुत पवित्र है, जमुना जी के किनारे निवास करेंगे तो पुत्र प्राप्ति हो सकती है, संतान प्राप्ति। तो दोनों यहाँ बरसाने नंदगांव छोड़कर गोकुल रावल में सेटल हो जाते हैं। और ये रावल में जब अपना पूजा पाठ करने के लिए सुबह उठते हैं ब्रह्मा मुहूर्त में, तो अपने वृषभानु सरोवर में बड़ा प्रकाश देखते हैं, और उसमें फिर आगे देखते हैं कि प्रकाश तो एक कमल की ओर से आ रहा है, हजारों पंखुड़ियों का एक सुंदर स्वर्ण कमल है, उसके अंदर से प्रकाश निकल रहा है। और जाके देखते करीब तो वो कमल से भी नहीं आ रहा है, एक कमल के अंदर एक सुंदर बालिका है, उसमें से प्रकाश आ रहा है। तब ब्रह्मा जी आकाश में प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि आप सुचंद्र राजा थे पिछले जन्म में, आपकी पत्नी कलावती थी, आपने तपस्या किया था, आपको हमने वरदान दिया था, उस वरदान के फल स्वरूप आज आपके लिए भगवान की अंतरंगा शक्ति राधा रानी प्रस्तुत है, आप उसको स्वीकार करो और अपनी कन्या के रूप में उसका लालन पालन करो। तो घर ले आए उनको, बड़ी खुशी हुई, लेकिन दुख भी हुआ साथ में। बताया ना मैंने आपको मटेरियल वर्ल्ड में कैसे होता है, हर सुख जो है वो दुख से मिक्स करके आता है। तो कन्या अंधी है, इतनी सुंदर है, इतने उनके अंगल अंग कोमल हैं, स्वर्ण कांति है, प्रकाश फैल रहा है सब जगह पे, सुगंध भी है शरीर को, दिव्य सुगंध, लेकिन आंख नहीं खुल रही है, ना कुछ सुन रही है, ना कुछ बोल रही, ना रो रही है, ना कुछ कर रही है। अभी क्या करे, उत्सव मनाए कि नहीं मनाए, शुभ माने कि अशुभ माने। नारद मुनि आए उसमें से, नारद मुनि को पता था कि भगवान की अंतरंगा शक्ति अभी जन्म लेने वाली है, प्रकट होने वाली है, तो अपना चार्ट बनाकर आए थे, वो देख रहे थे GPS मैप कहाँ दिखा रहा है। तो सीधे वृषभानु महाराज घर पहुंचे, वहां इंक्वायरी करते कि आपके घर में कोई कन्या हुई है। अभी वो संकोच में है, क्यों कैसे बताएं, कन्या तो हमारी अंधी गूंगी बहरी है, क्या बताएं। तो वो नहीं बोलते, नहीं हमारे घर में कोई कन्या नहीं हुई, कोई संतान है आपको कोई? हाँ, तुरंत सीधा माँ को आगे करते हैं, हमारा एक लड़का है। तो वो बोलते हैं, अरे मेरे गणित में लिखा है तो कन्या होने वाली, तो लड़का कैसे आ गया? तो वो थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं, पजल्ड, गणित करते करते निकल जाते हैं वहां से। उतने में कीर्ति मैया की सखियां जो है ना, वो कहते हैं कि अरे साधुओं का बहुत शक्ति होती है, उनके आशीर्वाद से क्या नहीं होता है, तो बड़े महात्मा दिखते हैं, आप उनको झूठ मत बोलना, उनको सच बता देना क्या क्या है। वो कैसे डॉक्टर, डॉक्टर क्या, हम लोग जाके कुछ झूठ नहीं बोल सकते हैं। हरे कृष्णा, डॉक्टर के पास अगर आपको छुपाएंगे तो नुकसान डॉक्टर का नहीं है, आपका ही है। तो साधु तो सबसे बड़े डॉक्टर होते हैं, आत्मा के डॉक्टर होते हैं, उनके पास कुछ छुपाना मत, कुछ बताना ऐसे कुछ झूठ नहीं बताना उनको, जाओ उनको बताओ। तो कीर्ति भैया फिर सबको भेजते हैं, जाओ महाराज को बुला लो। महाराज को बोलते है कन्या है, तो नाच से हुआ, हाँ आपने कहा था, हमको लगा था कि इधर ही, आप कैसे ना बोल रहे हैं, हमारा गणित कह रहा है कि इधर ही है। तो फिर वो आते हैं और दर्शन करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं और सबको वो बताते क्या करें, अंधी हो ऐसे ऐसे है। तो उनको सब पता है ना, नारद मुनि सब त्रिकालदर्शी, सब ज्ञान है उनको, उनको पता है ये ऐसे क्यों है, कहाँ से आई, सब पता है उनको। तो फिर आप निश्चिंत रहो, आप ना धूमधाम से जन्मोत्सव मनाओ, उनका बर्थडे सेलिब्रेशन करो, कोई चिंता मत करो। लेकिन लेकिन उस समारोह में नंद बाबा यशोदा को बुलाना मत भूलो, उनको इनवाइट करो ही करो, बच्चों के साथ सब परिवार। और अभी जाओ तैयारी करो, सब लोग जाओ जाओ, सबको भगा देते हैं और अकेले राधा रानी के साथ में पलने के साथ में रहते हैं। तो जैसे सब जाते हैं ना, तुरंत राधा रानी 16 साल का रूप का दर्शन देती है उनको। यहाँ कहीं फोटो होगा, ऐसे दर्शन देते हैं राधा रानी को, दंडवत प्रणाम करते हैं अनंत बार, बेहोश होते हैं, नाचते हैं कूदते हैं, बेहोश होते हैं, फिर होश संभलते हैं तो कहते हैं कि हमें आपका अष्ट सखियों के साथ दर्शन करना है। तो राधा रानी कहते हैं कुसुम सरोवर जाओ, वहां पर होंगे। तो या वहां जाते हैं, ऐसे कहते हैं कि रावल से निकलते हैं ना, नाचते नाचते नाच रहे हैं, लोटपोट हो रहे हैं, गोल 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 लोटपोट होते होते कैसा नहीं पता नहीं, ऐसे पहुंच जाते हैं कुसुम सरोवर। नॉट अ स्ट्रेट ट्रैफिक भाव भी जाते हैं। तो वहां पर कुसुम सरोवर पे उनको माधवी गोपी और वृंदा गोपी मिलती है, स्वागत करती है उनका, और वो उनको कुसुम सरोवर के दक्षिण किनारे में स्नान कराती है। तो नारद मुनि नारद या गोपी बन जाते हैं, उनको गोपी शरीर प्राप्त होता है। फिर उनको वो दोनों गोपियां मिलकर श्रृंगार करती हैं, बहुत सुंदर, उनके हाथ में चामर देती हैं, उनको हाथ पकड़कर, उधर कुसुम सरोवर के अंदर एक बड़ा कमल है, वहां पर राधा कृष्ण विराजमान रहते हैं और 8 पंखुड़ियों पर अष्ट सखियां खड़ी रहती हैं, सेवा करती रहती हैं, तो सबका दर्शन करते हो। और उनको लेकर जाकर वो कमल के पंखुड़ियों के बीच में जगह जो है ना, वर्ल कहते हैं, वर्ल ऑफ लोटस, जो प्लेटफॉर्म होता है ना वेदी, उस पर लेके जाते हैं दोनों गोपियां, और हाथ में चामर देकर नारद मुनि जो है नारदीय गोपी के रूप में उनकी चामर सेवा करते हैं। फिर राधा रानी को आदेश देती है कि आप यहीं रहो और हमारे विग्रहों की पूजा का शास्त्र लिखो, पंचरात्रि का विधि। तो वो कहते हैं मुझे तो शाप है दक्ष राजा का, 3 दिन के पहले कहीं और कहीं रहने का मुझे अधिकार नहीं है। वो कहते हैं नारद मुनि जी महाराज, नारदीय गोपी, ये शाप भौतिक दुनिया में है लागू, आप अभी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो, वृंदावन धाम में हो, वो शाप यहाँ लागू नहीं, यहाँ पर जितना मर्जी रहे हो आप आराम से और शास्त्र लिखो। तो नारद मुनि जी फिर वापस आए हैं, उनको रास मंडल से, बीच में से मंडल से दोनों लेके आए हैं, माधवी गोपी वृंदा गोपी, फिर उनको स्नान कराया है। तो फिर नारद मुनि का पुरुष शरीर प्राप्त हुआ है और फिर वो वहीं से आगे नाचते हुए गए हैं, 1 ही किलोमीटर आगे वहां से नारद वन, वहां पर निवास किया उन्होंने और वो ग्रंथ लिखा है। तो ये बरसाने का संक्षिप्त इतिहास इतिहास है। तो जब भी नंद महाराज और विश्वानु महाराज ने एक दिन मीटिंग किया और देखा कि रोज आतंक यहां पर है, कंस की तरफ से रोज राक्षस आकर कृष्ण को मारने का प्रयास कर रहे हैं, अभी ये जगह जो है ना असुरक्षित हो गई है, नॉट वेरी सेफ, जिस उद्देश्य के लिए आए थे वो सफल हो गया ना, अभी हमको कृष्ण बलराम प्राप्त हुए, आपको राधा रानी प्राप्त हुई, अभी हमको जाना चाहिए। तो फिर वो वापस चले गए, नंदगांव बरसाने में आके बस गए और फिर यहाँ पर उनकी लीला शुरू हुई। कंस यहाँ पर भी आए लेकिन वो स्त्री बन गए, वो लंबी कहानी है उसकी, कोई राक्षस नहीं आया उसके बाद में। तो भगवान यहाँ पर अपनी अंतरंग लीलाओं को, उत्कट लीलाओं को करने के लिए ये सारा इंतजाम करते हैं। बाकी जगह भी लीला कर रहे हैं, वो भी दिव्य लीला है, लेकिन उसमें भी दिव्यतम लीला है ना, मच मोर डीपर स्पिरिचुअल पास टाइम्स, प्रेम की लीलाओं करने के लिए यहाँ का एरिया चुना है उन्होंने, बरसाना नंदगांव जावट, यहाँ पर कोई राक्षस नहीं आया कभी भी, ऐसा क्षेत्र ही है जहाँ पर आप लोग आए आए हो, किसी को प्रवेश नहीं मिलता यहाँ पर, राधा रानी स्वामिनी जो है जब हाँ करती है ना तभी मिलता है प्रवेश यहाँ पर, बड़ी कृपा से मिलता है प्रवेश, टिकट निकालने से रूम बुक करने से नहीं मिलता है वो तो करते ही हम लोग करना चाहिए, लेकिन उससे प्रवेश मिलेगा ऐसा सोचना मत आप, जब गुरु कृपा होगी वैष्णवों का आशीर्वाद होगा तब श्री जी महाराज ने आपको हाँ बोलेगी तब आप यहाँ पर आ सकते हो, और एक बार आओगे तो दर्शन करके जाओगे, अगर ज़्यादा आपका भाव सही रहेगा तो आपको सेवा देगी वो अपने प्रियजनों की। बाय द वे यहाँ के लोगों को आपकी सेवा की आवश्यकता नहीं है, आप बोलेंगे फिर क्यों टाइम पास कर रहे हो, क्यों आए स्वीटी लेकर, इतना लंबे से आए यहाँ से, जरूरत नहीं बोलते नहीं, हमें यहाँ पर उनकी सेवा करने की जरूरत है, वी नीड टू सर्व देम, उनको मोतिया का बहाना है, हमारा अज्ञान का मोतिया निकालना है, इसलिए हम लोग आए हैं यहाँ पर, तो ये मत समझना कि हम बड़ा उपकार कर रहे हैं उनके ऊपर, छुट्टी निकाल कर आए हैं, डॉक्टर हैं, लाखों कमाने वाले हैं, यहाँ पर फ्री सेवा दे रहे हैं, गरीबों पर उपकार कर रहे हैं, ये सब मत सोचना, राधा रानी के सेवक हैं वो, उनकी गोद में है वो, उनकी छत्र छाया में है, कृपा छत्र में है वो समर्थ है उनका देखभाल करने के लिए, लेकिन आपको बहाना बनाकर दे रही है सेवा। जैसे जब लक्ष्मण जी बेहोश हो गए थे ना, तो प्रभु रामचंद्र वो नागपाश से बांध गए ना, वो इंद्रजीत ने नागपाश फेंका उनके ऊपर, तो बेहोश हो गए वो और मरने वाले थे, मतलब नागपाश का समय था, तो गरुड़ जी को आह्वान किया गया, तब भगवान का गरुड़ जी का संवाद है, वो कहते हैं कि ये तो लक्ष्मण है, अनंत शेष है, इनको कौन मार सकता है, लेकिन आप बहुत दिन से मुझसे दूर थे ना, इसलिए मैंने, क्योंकि रामलीला में कुर गरुड़ जी का काम नहीं है ना किधर भी है किधर, तो मुझसे आपका विरह हो रहा था, इसलिए आपको सेवा देने के लिए मैंने ये लीला किया, ताकि आपने आके कुछ सेवा किया, तो क्योंकि गरुड़ जी आकर वो काटते ना नागपाश को, लक्ष्मण जी को जीवित करते ना वापस, बेहोश से होश में आते, तब प्रभु रामचंद्र बताते लक्ष्मण गरुड़ जी को कि कोई जरूरत नहीं है सब करने की, लेकिन आपको लीला में सम्मिलित करने के लिए, सानिध्य देने के लिए मैंने सब किया, उसी तरह से उनको कैटरेक्ट दिया आप लोगों को सेवा देने के लिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, क्या होगा, मर जाएंगे अंधे होकर, कहाँ होगा मर जाने के बाद, भगवत धाम चले जाएंगे, लेकिन आप कैटरेक्ट निकालोगे उनका, उसमें सहायता करोगे, कुछ दिन देखेंगे, एक दिन तो मर जाएंगे ना उसके बाद में, ऐसा है कि आपने कैटरेक्ट किया इसलिए वो जिंदा रहेंगे, नहीं, वो कैटरेक्ट को निकालेंगे, लेकिन लाइफ का एक एक्सपायरी डेट है ना, लाइफ का एक्सपायरी डेट तभी सबको एक्सपायर होना ही है यहाँ पे, लेकिन आपका सेवा उसमें दर्ज हो जाएगा, वो शरीर जलकर राख हो जाएगा एक दिन जिसमें आपने कैटरेक्ट निकाला था, लेकिन उस शरीर के अंदर जो आत्मा है उसको आपने शरीर से दृष्टि दिलवाई थी, उसमें सहायता की थी आपने, असिस्ट किया था, वो आपके नाम पे जमा हो जाएगा, वो शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन सेवा आपने जो की है वो अजरामर हो जाएगी, यानी कि चिरंतन रूप में उसका रिकॉर्ड हो जाएगा, बाकी सब नष्ट हो जाएगा यहाँ पर, आपने जो सेवा किया है वो चिरंतन खाते में जमा हो जाएगा, बाकी जहां पर भी आपने सेवा किया है वो जो भी सब नष्ट हो जाएगा, आपकी सेवा जो है ना वो अक्षय खाते में जमा हो जाएगी, और वो खाते में जो जमा किया आपने वो आपको वहां पर काम आएगा भगवत धाम जाने के लिए। जय जय श्री राधे श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लोग बरसाना धाम में आए और यही भाव से सेवा कीजिए, श्री जी आपको बार बार बुलाएं, हर साल बुलाएं, अपनी सेवा में रखें, कृपा में रखें, यहाँ से जाने के बाद भी अपनी छत्र छाया में रखें, बम्बई में, दिल्ली में, कहीं पर हो आप, और उनकी याद आपको आती रहे, उनकी सेवा, उनका नामस्मरण आपसे होता रहे, ये हमारे उनके चरणों में प्रार्थना है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।